पृष्ठ संख्या 115, गजानन माधव मुक्ति बोध, 1917 से 1964 ईस्वी। आधुनिक हिंदी कविता की समृद्ध परंपरा में गजानन माधव मुक्ति बोध उस कवि वर्ग का नेतृत्व करते हैं जिसकी रचना प्रक्रिया स्थिर और जड़ीभूत न होकर निरंतर ग्राह्यमान और गतिशील रही है। कविता के अतिरिक्त कहानी, निबंध, आलोचना, उपन्यास तथा डायरी साहित्य सभी पर उन्होंने लेखनी चलाई, पर इसमें कवि रूप में ही वे सर्वाधिक चर्चित रहे हैं। जीवन की भयावहता, हाहाकारी और विद्रूपता को जिस आक्रोश, प्रखरता और जिंदा दिली के साथ फैंटेसी शिल्प के जिस नवीन कलेवर में उन्होंने अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया, वह हिंदी कविता में अद्वितीय है। कला के इस प्रसिद्ध तेवर ने उन्हें दुरूह तो अवश्य बनाया, पर इसके साथ कवियों का कवि भी बना दिया। श्रीकांत वर्मा ने उनकी कविताओं को उनके समय का इतिहास करार दिया तो शमशेर बहादुर सिंह ने उन्हें राष्ट्र का दहकता हुआ दस्तावेज कहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। होलकर कॉलेज इंदौर से बीए तथा नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर की हालत ठीक न होने के कारण सर्वप्रथम कुछ दिनों तक उन्होंने एक मिडिल स्कूल में शिक्षक की नौकरी की। कालांतर में शुजालपुर, उज्जैन, कलकत्ता, इंदौर, बंबई, बंगलौर, बनारस और जबलपुर आदि स्थानों पर इन्होंने शिक्षण कार्य किया। 1958 ईस्वी में तमाम भटकाव के बाद दिग्विजय कॉलेज राजनांद गांव के प्रधाना अध्यापक पद पर आसीन हुए। इस बीच उन्होंने वायुसेना तथा पत्रकार के रूप में भी नौकरी की। तार सप्तक द्वितीय संस्करण के एक वक्तव्य में मुक्तिबोध ने अपने संघर्षशील करुण जीवन की गाथा को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। नौकरियां पकड़ता छोड़ता रहा, शिक्षक, पत्रकार, पुनः शिक्षक, सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां, निम्न मध्यम वर्गीय जीवन, बाल बच्चे, दवा दारू, जन्म मृत्यु। मुक्तिबोध की आरंभिक रचनाएं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के करमवीर में छपती थी। कुछ दिनों तक उन्होंने नागपुर में स्वामी कृष्णानंद सोक्ता के साप्ताहिक पत्र नया खून में भी काम किया था। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, मराठी पर उनका समान अधिकार था। प्रारंभ में वह मुक्तिकाम, पृष्ठ संख्या 118, प्रारंभ में वह मुक्तिकाम, माधुवायन, छदम नाम से भी रचनाएं किया करते थे। अज्ञेय संपादित तार सप्तक 1943 ईस्वी में सर्वप्रथम वह दिखाई पड़ते हैं। विचारों से मुक्तिबोध मार्क्सवादी और नास्तिक थे। यूरोप के महान साहित्यकारों गोर्की, वाल्जाक, फ्लावियर, दास्तवस्की आदि का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। जब अज्ञेय ने 1946 में प्रतीक पत्रिका का संपादन किया, तब उसमें मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। हिंदी में मुक्तिबोध अपनी लंबी कविताओं तथा उसमें फैंटेसी शिल्प प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। कृतियाँ चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काव्य संग्रह काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कथा साहित्य, कामानी एक पुनर्विचार, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा ग्रंथ, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, निबंध संग्रह तथा एक साहित्यिक की डायरी, डायरी साहित्य। मुक्तिबोध ने भारत इतिहास और संस्कृति नाम से एक पाठ्य पुस्तक भी लिखी जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया। कामायनी एक पुनर्विचार 1950 के अतिरिक्त स्वयं मुक्तिबोध के जीवन में कोई रचना प्रकाशित नहीं हो सकी थी। प्रायः उनकी रचनाओं का प्रकाशन उनके मरणोपरांत हुआ। पंडित नेमीचंद्र जैन ने, जो मुक्तिबोध के बड़े ही आत्मीय मित्र थे, 6 खंडों में उनकी ग्रंथावली का प्रकाशन कराया है। नेमीचंद्र जैन तथा प्रभाकर माचवे उनके घनिष्ठ मित्रों में थे जिनसे मुक्तिबोध बहुत प्रभावित थे। मुक्तिबोध का प्रसिद्ध कविता संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है उनकी मृत्यु उपरांत 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें छोटी बड़ी मिलाकर कुल 28 रचनाएं संकलित हैं। हिंदी कविता जगत में मुक्तिबोध के इस एक संकलन ने ही उन्हें सदा के लिए स्थापित कर दिया। इस संकलन में भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे पुकारती हुई पुकार, मैं तुम लोगों से दूर, चकमक की चिनगारियाँ, अंतःकरण का आयतन, चंबल की घाटी में और अंधेरे में, जैसी अनेक प्रसिद्ध लंबी कविताएं संग्रहित हैं। इनमें से अधिकांश का रचना काल 1950 से 1960 ईस्वी के बीच का है। पक्षाघात और मेनिनजाइटिस की लंबी बीमारी के पश्चात 11 सितंबर 1964 ईस्वी को मुक्तिबोध का गोलोकवास हो गया। नई कविता को परिभाषित करते हुए मुक्तिबोध ने कहा था, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की संवेदनात्मक प्रक्रिया है। मुक्तिबोध की कविताओं में वैविध्यमय जीवन के आत्मचेतसपन और संवेदनात्मक प्रतिक्रिया को सहज ही देखा जा सकता है। मुक्तिबोध जब अपने गहन और व्यापक अनुभवों को फैंटेसी शिल्प में प्रस्तुत करते हैं, पृष्ठ संख्या 119, तब उनकी कविता एक नए जादुई लोक का निर्माण करती हुई प्रतीत होती है। छायावादी रूमानी कविता से अलग हटकर मुक्तिबोध अपने भोगे हुए यथार्थ अनुभव, जिसे वह संवेदनात्मक ज्ञान तथा ज्ञानात्मक संवेदना कहते हैं, का बिल्कुल नया प्रयोग करते हैं। सिर्फ भाव ही नहीं, भाषा और शिल्प के स्तर पर भी उनका प्रयोग सभी हिंदी कवियों से भिन्न है, जो उनकी महान काव्य प्रतिभा का सूचक है। मुक्तिबोध की आरंभिक कविताओं पर छायावादी रोमानियत का प्रभाव है। मुझे याद आते हैं एक स्वप्न कथा, मृत्यु और कवि, आत्मा के मित्र मेरे, आदि ऐसी ही कविताएं हैं जिनका विषय प्रेम, भावुकता, करुणा, विषाद और विरह है। किंतु जब वह कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विचारों से परिचित हुए, तब उनकी कविताओं का रुख ही बदल गया। उसमें आया अंतर्द्वंद्व, आत्मसंघर्ष, आत्मालोचन, आत्माधिकारापन, विषाद, कुंठा एवं नैराश्य का भाव। उनके स्वयं के जीवन संघर्ष तथा मार्क्स के वैचारिक सिद्धांतों के प्रभाव का परिणाम था। मुक्तिबोध जीवन भर लड़ते रहे इतिहास से, समाज से और सबसे ज्यादा अपने आप से। श्रीकांत वर्मा ने सच ही में लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा, किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास हैं। जो इन कविताओं को समझेंगे, उन्हें मुक्तिबोध को किसी और रूप में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी के एक एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीकर मुक्तिबोध ने अपनी स्मृति के लिए सैकड़ों कविताएं छोड़ी हैं, और ये कविताएं ही उनका जीवन वृतांत है। वस्तुतः ये कविताएं उनकी जिंदगी का एक्सरे हैं। मुक्तिबोध जिंदगी से कविता तथा कविता से जिंदगी को जोड़कर देखने वाले प्रतिबद्ध कलाकार थे। मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं की रचना प्रक्रिया के विषय में नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध में विस्तार से बताया है। वे कहते हैं कि उनके भीतर संवेदनाओं का ना रुकने वाला ऐसा अंतः प्रवाह उमड़ता है कि कविता स्वयं ही लंबी होती जाती है। भाव अतिरेक, वैचारिक तनाव, आंतरिक द्वंद्व तथा गतिशील गुम्फित यथार्थ और फैंटेसी शिल्प का अराजक स्वप्नलोक उनकी कविताओं को प्रदीर्घ कर देता है। इसीलिए मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं को भयानक हिडिंबा कहा है तथा उसे बिना छत, बिना घर, गिरस्तीन वाली बताया है। इसी क्रम में मुक्तिबोध ने कविता को कालयात्री, विश्वशास्त्री और जनचरित्री कहा है। नहीं होती कहीं भी खत्म कविता, नहीं होती कि वह आवेग त्वरित कालयात्री है, वह मैं उसका नहीं करता। पृष्ठ संख्या 120, पिता धाता कि वह कभी दुहिता नहीं होती, परम स्वाधीन वह विश्वशास्त्री है, गहन गंभीर छाया आक विस्यत की लिए वह जनचरित्री है। चकमक की चिनगारियों से, जो कविता जन के चरित्र का निर्माण नहीं करती, वह कविता नहीं हो सकती। मुक्तिबोध ने उसे एक ना खत्म होने वाली अविराम यात्रा करार दिया है। इसीलिए उन्होंने अपनी अधिकांश कविताओं को अपूर्ण कहा है। अंधेरे में मुक्तिबोध की एक ऐसी ही लंबी कविता है जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से कल्पना पत्रिका में हुआ, जिसके प्रधान संपादक बद्री विशाल पित्ती थे। बाद में जब चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ तब इसे अंतिम कविता के रूप में उसमें संग्रहित कर दिया गया तथा मुक्तिबोध की इच्छा अनुसार इसका नाम बदलकर अंधेरे में कर दिया गया। यह भयानक आत्मसंघर्ष की अवस्था में लिखी गई मुक्तिबोध की सबसे लंबी कविता है, जिसके विषय में मंगलेश डबराल ने सत्य कहा है कि इन्वर्टेड कामा अंधेरे में मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता जो अब हमारे समय का विचलित करने वाला प्रत्याख्यान और हमारी चेतना का मानचित्र बना चुकी है, पिछले 50 वर्षों की कविता का स्वभाव और स्वरूप जानने के लिए अगर हम किसी केंद्रीय रूपक या प्रतिनिधि पाठ की खोज करें तो वह अंधेरे में ही है। कहना ना होगा कि जिस प्रकार प्रसाद के कवि जीवन का चरम निदर्शन कामानी, निराला का राम की शक्ति पूजा, पंथ का परिवर्तन और अज्ञेय का असाध्य बीड़ा में हुआ है, वैसे ही मुक्तिबोध के जीवन संघर्ष उनके ज्ञान और दीर्घकालीन संपूर्ण चिंतन तथा कलात्मक वैशिष्ट की क्रिया का चरम परिणति ज्ञानमणि के समान अंधेरे में कविता में हुई है। शमशेर के अनुसार इन्वर्टेड कामा कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात का एक दहकता हुआ इस्पाती दस्तावेज है। इन्वर्टेड कामा बंद हिंदी के अन्य अन्य चिंतकों ने भी इस कविता का मूल्यांकन अपने अपने दृष्टिकोण से किया है। मुक्तिबोध जैसे नए कवियों की लीक से हटकर ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन के लिए ही हिंदी की नई पीढ़ी के समीक्षकों को कविता के नए प्रतिमान जैसे काव्यमानों की आवश्यकता महसूस हुई।